दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
एरिक भाई, जिम भाई, हेलो और ओम शांति। दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे। जिम भाई, धन्यवाद। मैं बहुत ही हर्षित हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इस बातचीत में मैं आपके साथ हूँ। एरिक भाई, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आपके मन में स्वर्णिम युग की क्या रिकॉर्डिंग भरी हुई है? हम आपकी स्वर्णिम युग की ओर बढ़ती हुई रोमांचक यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। हमें मालूम है कि आप बाबा के साथ लंबे काल से हैं। आपको भविष्य की दुनिया के कुछ मनोरंजक अनुभव हुए होंगे, तो हम शुरू करते हैं आपके निजी अनुभवों से। आप ज्ञान में कब आए आदि। स्वर्णिम युग का विषय आपको दिया गया था, उस समय आपकी प्रतिक्रिया और अनुभव क्या थे और आपने स्वर्ग की अवधारणा को कैसे समझा, जैसे बाबा ने आपके समक्ष वो प्रस्तुत किया। जिम भाई, मुझे एक बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ। मैं अभी ज्ञान में नया था। स्वर्णिम युग मुझे लगभग एक ऐतिहासिक रीति से प्रस्तुत किया गया। मुझे उसकी संकल्पना बहुत ही अच्छी लगी। मैं मधुबन दादी कुमारका की यात्रा की टोली का हिस्सा बनकर पहुंचा। रास्ता बहुत ही अच्छा था, मौसम बहुत ही सुंदर और एक स्वर्णिम संध्या थी। बहुत ही अनोखा सूर्यास्त था। हम मधुबन में पहुंचे, वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। सारे निवासी आंगन में मोमबत्ती पकड़े हुए कतार में खड़े थे, जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं। शायद मैं आधे नशे में पहले से ही था, क्योंकि मैं दादी कुमारका के साथ वार्तालाप और दिल्ली से सफर करता हुआ आ रहा था। वो एक बहुत ही विशेष हस्ती थी और जैसे ही मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो किसी दूसरी वास्तविकता में मैं प्रवेश कर गया हूँ। मानो एक प्रकार की रहस्यमय स्वर्णिम दुनिया है। हर चीज स्वर्णिम प्रकाश में संवलीन प्रतीत हो रही थी और उनके काल्पनिक स्वप्न जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। माताएं और भाई बहुत ही तेजस्वी और उनके नैनों में बहुत ही स्नेह और आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक सुंदरता थी। आप जानते हैं कि यहाँ की संस्कृति बहुत ही शिष्ट और सभ्य है, वो अत्यधिक विशाल प्रतीत हो रही थी। दादी चारों ओर घूम रही थी, ऊर्जा से परिपूर्ण वह सबको स्वीकृति व वरदान दे रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई भव्य जादुई रानी हो, स्नेह का आदान प्रदान करते हुए। यह एक बहुत ही असाधारण अनुभव था। मैंने उनके साथ कमरे में भेंट की, जो पीछे मुड़कर देखने पर बहुत ही अविश्वसनीय अनुभव लगता है। ऐसा लगता है कि मैं एक रानी के सामने बैठा था, जिसके पास बहुत ही शक्ति, रॉयल्टी और सुंदरता थी। सच पूछो तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हम वहाँ थोड़ी देर साइलेंस में बैठे। दादी के नैन मेरे से बहुत कुछ कह रहे थे, मेरे हृदय को शक्ति से भर रहे थे। उनके स्नेह युक्त और आध्यात्मिक महत्व से भरे हुए शब्द मेरे चारों ओर घूमने लगे। मैं पूरा अचंभे में भरपूरता का अनुभव कर रहा था। ये बहुत ही अनोखा अनुभव था। मुझे लगा ये स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग ऐसा ही होता होगा। ये मेरा सबसे गहरा स्वर्ग का अनुभव था, जबकि हम उस पर मुड़कर दृष्टि डाल रहे हैं। एरिक भाई, आपके अनुसार किसने आपको प्रेरणा दी यह ध्यान में रखते हुए कि साधारण सड़क पर चलने वाले मनुष्य को यही दृश्य देखने के पश्चात यह समान अनुभव नहीं होगा। आपके अंदर ऐसा क्या था जिसने आपको संरेखित यानी अलाइन किया इस दृश्य को समझने में कि वो एक दिव्य रहस्यमय या असामान्य दृश्य था? जिम भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे सचमुच नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी शुरुआत के दिनों पर आधारित है जब मुझे पौराणिक कथाओं में रुचि थी। शायद तभी से यह शुरू हुआ, यह ऊपर की ओर जाने वाली जीवन यात्रा से, या मेरे पहले शौक की प्रतिध्वनि थी जिसने मुझे पहले से ही सुंदर सूक्ष्म शक्ति का अनुभव कराया। यह कैसे शुरू हुआ, ये मेरे लिए बताना मुश्किल है। एरिक भाई, हमें पता है कि दादी जी की ऊर्जा शक्ति का एक अनूठा परिमाण है उनकी प्रतिभाशाली वाइब्रेशंस। शायद वो वाइब्रेशंस स्वर्णिम युग की बची हुई वाइब्रेशंस की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है। जिम भाई, हाँ एरिक भाई, ऐसा प्रतीत होता था जैसे दादी अपनी तरफ सारे विश्व को खींच रही है और मैं उनकी दुनिया का हिस्सा था, उस साम्राज्य का हिस्सा था, मैं उस युग का हिस्सा था। मानो सबको वो इकट्ठा कर रही हो, एक साथ ला रही हो, जैसे हम वापस साथ आ गए थे, जैसे दादी कह रही हो आपका स्वागत है। स्वागत करने का ये एक महान नियम है लंबे काल से बिछड़ी हुई प्रजा को जो जंगल में कहीं खो गई हो। एरिक भाई, आपने ये अनुभव किस तरह इस्तेमाल किया, सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके ये पहेली हल की कि यह स्वर्णिम युग क्या है? आपने बाबा की मुरली सुनी है, बाबा सत्युग का वर्णन बहुत विस्तार में बताते हैं। हम क्या करेंगे, वहाँ क्या होगा, शाही दरबार, शाही राजघराना, आपने यह सारे टुकड़ों को कैसे इकट्ठा किया? आपके लिए सत्युग क्या था, उन मुरलियों को ध्यान में रखते हुए जो बाबा ने हमें सुनाई है? जिम भाई, उस समय तो मैंने सब कुछ समा लिया क्योंकि मैं उस माहौल में था। मैंने इस पर गौर नहीं किया, बस उस सूक्ष्म एनर्जी पर तैरता रहता। बाद में जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ एक किस्म की प्रतिध्वनि शायद दादी अपने साथ ले आती थी, और मेरे लिए सत्युग के आवश्यक संस्कार दादी में समाहित थे। वो अपने साथ कोड रखे थी जो उनकी आध्यात्मिक डीएनए में समाविष्ट थे। इस तरह हम उन तक पहुंच सकते हैं। मेरे विचार दादी के लिए हैं कि वो पूर्णता हर एक आत्मा के लिए स्वीकृति से भरी हुई थी, कि वो आध्यात्मिक रीति से अनन्य आत्मा है या पिता का विशेष बच्चा है। उनको सब आत्माओं के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था, चाहे वो कनिष्ठ या वरिष्ठ हो, जवान या बूढ़े हो। ये अतुल्य प्रेम सबको सबसे सम्मिलित करने वाला, वो बेहद के स्नेह और परोपकार का अवतार थी, कुछ भी पकड़कर नहीं रखने वाली, सिर्फ पूरी तरह से दाता। ऐसा लगता था उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ बचा के नहीं रखा। एरिक भाई, आपके मन में क्या आता है जब हम कहते हैं कि हम अब सतयुग में हैं, जबकि आपको दादी जी के साथ इतने अनुभव हुए हैं? जब बाबा कहते हैं तुम्हें अपने को तैयार करना है, अपना वर्षा पाना है, तुम नई दुनिया में जाओगे, तो आपके सतयुग के बारे में क्या भाव है? जिम भाई, व्यक्तिगत रूप से मैं अपने साथ सत्युग का कोई भी सचित्र नहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ की कुछ आवश्यकताएं हैं जो हमें धारण करनी है वहाँ जाने के लिए, उस दुनिया की अनुभूति करने के लिए। मैं वहाँ जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं क्या सत्युग की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा हूँ। मुझे अपने इस जन्म का उद्देश्य सिर्फ सत्युग की स्थापना का लगता है और कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जीवन का ध्यान इसी पर केंद्रित रहे और कहीं पर भी न जाए। एरिक भाई, क्या आपको अपने प्रयास या अपनी चेतना में या जागरूकता में परिवर्तन होता दिखाई देता है इस महसूसता के साथ कि मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ? जिम भाई, ये मानो जांचना है कि कहीं हम अपना उद्देश्य तो नहीं खो रहे हैं, बहुत आलसी तो नहीं बन रहे हैं, या कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज की भ्रांतियां हैं, और हम सब इसका अनुभव करते हैं। मैं इसका अनुभव करता हूँ नाम मान शान के लिए, और एक बार हम उस तरफ चलने लगते हैं तो हम सच्चा स्नेह खोने लगते हैं और उदार होने की, स्वीकार करने की क्षमता को भी। फिर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होता, कोई भी सूक्ष्मता नहीं रह जाती है। इस तरह की चेकिंग मैं आजकल करता हूँ कि कहीं मैं इन भ्रांतियों का शिकार तो नहीं बन रहा हूँ। एरिक भाई, तो वो क्या ऐसी विशेष योग्यताएं हैं नई दुनिया में जाने के लिए जिससे आपको लगता है कि आप इस स्थापना का हिस्सा हैं, और उत्सुक हूँ कि क्या आप उस मापदंड की कसौटी पर खरे उतरे हैं? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मापदंड क्या है जो आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे में ये है कि नहीं? जिम भाई, हंसते हुए, अच्छा सवाल है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगले ही क्षण बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं नहीं गया हूँ। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। व्यक्तिगत रूप से बाबा ने हमें अलग अलग क्षेत्र दिए हैं कि अगर हम इन क्षेत्रों पर केंद्रित रहें और उन्हें अपना आधार बना लें सूक्ष्म बनने के लिए, तो ये हो सकता है ब्राह्मण होने के नाते हमें भौतिक दुनिया में बहुत नहीं उलझना है, जो कि हम ब्राह्मण जीवन में करते हैं। हम इतना कुछ कर रहे हैं, परंतु बाबा हमें मुख्य क्षेत्र देते हैं। यह मुख्य क्षेत्र है, तुम सूक्ष्म बनो, और ये क्षेत्र तुम्हें हल निकालने में और आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जैसे कि अमृत वेला। मेरे ब्राह्मण जीवन में दादी जानकी ने अमृत वेला का महत्व मेरे अंदर अंकित कर दिया है। उस समय से जब मैं दरवाजे से अंदर घुसा, और मेरे ब्राह्मण जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अमृत वेला। जैसे आपके अंदर ये समझ आने लगती है कि ये एक सूक्ष्म बनने का तरीका है, और यकीनन भोग लगाना, मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये हम रद्द कर सकते हैं कि यह तो सिर्फ एक रस्म है या एक विधि है, लेकिन असल में उस रस्म के पीछे सूक्ष्म बनने की विधि है। उस सूक्ष्म वतन में जाना और उन सारी चीजों को यहाँ पर ही छोड़कर जाना जो इस दुनिया ने हमारे ऊपर डाली है, और मंथन करने का पहलू भी, बाबा हर समय हमें बतलाते हैं कि बच्चे मंथन करो मंथन करो। यह हमें असल में लाइट बनाता है, हमारी पकड़ को ढीली करने में मदद करता है। यह एक खेल है और हमें छोड़ते जाना है, और एक बार हम छोड़ते चलते हैं तो हम ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। हम अतिक्रमण असेंशन में जा सकते हैं, हम सूक्ष्म जीव बन सकते हैं और वो सूक्ष्म लाइट और सूक्ष्म एनर्जी अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ देखो, वह बदलता रहता है और कुछ ही में घुल जाता है। इस समय इस क्षेत्र में मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। एरिक भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि भोग लगाना और अमृत वेले मंथन करने में आप स्वर्णिम युग की नींव को रख रहे हैं। जिम भाई, मैं निश्चित रूप से ये नहीं कहना चाहता क्योंकि अगले हफ्ते इस पर मेरी राय बदल सकती है, लेकिन मैंने बहुत महत्वपूर्ण पहलू देखे हैं और ये असल में चीजों का की रूपरेखा के पीछे की नींव है। आप इसके अभ्यास के महत्व को देखो, उसके नतीजे को देखो। बाबा बहुत स्तरों पर काम करता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। आप विशेष संरचनाओं के गहरे महत्व को देखो जो उन्होंने हमारे लिए जगह जगह बनाए हैं। वो हमें बहुत जल्दी ही उच्च चेतना में ले जाते हैं, हमें सूक्ष्म पहलू में ले जाते हैं, हमें उस स्वर्णिम स्थिति में ले जाते हैं जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। एरिक भाई, क्या आप कभी कल्पना करते हैं कि यह सब कैसे होगा? दुनिया को देखो तो जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी 7 अरब से भी ज्यादा है। बहुत साल पहले हमने सुना था कि यह 4-5 अरब से ज्यादा नहीं जा सकती, अभी 7 अरब पार कर गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया अव्यवस्थित ढंग से है। हम सब वो गीत सुनते हैं, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, बहुत बहुत ही लंबे समय से, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या आप अपने आप से कभी यह सवाल करते हैं कि यह कैसे होगा और कैसे हम तैयार होंगे वहाँ पर चलने के लिए? क्या अंत तक ब्राह्मण अपने प्रतिरोधी संस्कारों को खत्म कर सकेंगे? आपका इसके बारे में क्या विचार है? जिम भाई, हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे दुनिया टुकड़े टुकड़े हो रही है और सारे साधन बिखर रहे हैं, तो शायद ब्राह्मण जीवन भी अव्यवस्थित हो रहा है। यानी जो भी प्रारंभिक संरचना है शायद एक मचान की तरह है, क्योंकि मचान एक इमारत नहीं है, सिर्फ सहारा देती है। तो हम कह सकते हैं कि मचान धीरे धीरे गिर रही है और हमारे पास वो रह गया जो हमारे पास था, यानी जो बाबा ने दिया है, तो अब हमें उसके साथ दौड़ना है। तो अगर आपका मचान के साथ लगाव है तो आप भी उसके साथ गिर जाएंगे, लेकिन आप लुढ़ककर गहरी खाई में वापस आ जाएंगे, जो कि ये है। यानी जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें पकड़ के रखना है और उसके साथ दौड़ना है। जितना जितना हम सूक्ष्म हैं, उतना ही हम उसका हिस्सा नहीं है। ये सहारे की जो अधिरचना है, इस पर बहुत सारे ब्राह्मणों की दुनिया आधारित है। बाबा बहुत बार साधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी दुनिया की चीजें हैं जो कि ब्राह्मणों के साधन हैं। वो उनकी पहचान है, वो अभी भी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, और ये कई बीके अवतरित आत्माओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो अभी भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान दुनिया के एक हिस्से को पकड़े हुए हैं। अगर आप इसे पकड़े रहेंगे तो वापस भंवर में खिंचकर आ जाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा त्याग करना है और इस अव्यक्त चेतना को अनुभव करना है, यानी उसके ऊपर उठना है, तो हमारी दुनिया भी उसके ऊपर होगी। चाहे सारी चीजें खत्म हो रही हैं, बिखर रही हैं, टूट रही हैं, और ये सब होगा, लेकिन हमारा अस्तित्व सूक्ष्म फरिश्ते का होगा। हम कैसे उसका प्रबंध करेंगे, ये हमें आगे चलकर पता लगेगा। ये कुछ इस तरह है, हमें अपने लिए सारी चीजों की नींव का आधार सिर्फ एक बाबा को ही बनाना है। एरिक भाई, क्या आप देखते हैं कि ब्राह्मणों में इस बात की जागरूकता ज्यादा आती जा रही है, और आप में भी और लोगों में भी? अगर ये होता दिखाई पड़ेगा तो हमें आशा आएगी, ये अलग चरण में जाने की प्रक्रिया होगी। जिम भाई, नहीं, मुझे ये होता नहीं दिखाई देता, नहीं, मैं ये नहीं देखता हूँ। एरिक भाई, तो किसी चीज को तो इसे प्रेरित करना होगा। जिम भाई, शायद इसकी प्रेरणा का कोई कारण होगा, विस्फोट होगा या कुछ और होगा जो जनता को जगाएगा। बहुत से मत हैं कि यह कई ब्राह्मणों को मजबूर करेगा। हमें पता है कि ड्रामा एक अतुल्य प्रेरणा का साधन है जो लोगों को जगाता है और एहसास का कारण बनता है। शायद इस तरह का कुछ बीके की दुनिया में हो सकता है जो बहुत सारे लोगों को इस तरफ लाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया भौतिक चीजों पर निर्भर है, जैसे करना, बनाना आदि। मुझे लगता है कि हम अभी भी दुनिया को कुछ करके बदलना चाहते हैं। हमारा ध्यान कहीं खो गया है, हम दुनिया के पीछे भागने में व्यस्त हो गए हैं, दुनिया का ध्यान खिंचवाने में लग गए हैं। हमारी तरफ देखो, हमें सुनो, हमारा मुख्य ध्यान हमारा अपना खुद का परिवर्तन होना चाहिए, हमारी अपनी सूक्ष्मता और बाबा के मूल संदेश को लेना है। क्योंकि हम सुनते हैं कि कुछ ब्राह्मण ये कर रहे हैं, उनको मान्यता मिल रही है, हमें बहुत कुछ मिल रहा है, हमें मंच मिल रहा है। मेरी सोच से ये भ्रम है, भ्रांतिजनक है। हमें संकेत मिलता है कि शायद वो लोग इसमें शामिल हों, शायद उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें एक संकेत मिलता है कि हमें समान चीजें करनी है, और यह संदेश कि उनके जैसा बनो। देखो, उनको दर्जा मिल रहा है, मान मिल रहा है, ये सब बहुत सूक्ष्म है, और हम करना शुरू कर देते हैं, और आध्यात्मिक परिवार इसी की ओर हमेशा से अग्रसर है। हमें शांत होना चाहिए और चारों ओर बढ़ने की बजाय हमें ऊपर की ओर आरोहण करना है। वास्तव में हमें सब कुछ छोड़ देना है, और जब हम जाने देते हैं तो लोग हमारी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, इन कमाल के लोगों को देखो, वो कहाँ जा रहा है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, बजाय हमारे उनके पीछे भागने से और कहने से कि मेरी तरफ देखो। एरिक भाई, मैं आपकी स्पष्टता और ईमानदारी की सराहना करता हूँ। हम काल्पनिक दुनिया में नहीं रह सकते ये उम्मीद करते हुए कि डिज्नी वर्ल्ड स्वर्णिम युग में परिवर्तित हो जाए। ये थोड़ा वास्तविक होना चाहिए। मैं जल्दी से आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपके साथ मेडिटेशन में जाने से पहले, आप हास्य में निपुण हैं और आपने हमें सालों से हंसाया है, क्या स्वर्णिम युग में हास्य होगा? वहाँ हंसी मजाक के लिए जगह होगी या अच्छे मनोरंजन के क्षण होंगे? क्या आप हास्य को अपनी अगली भूमिका में विकसित होता देख रहे हैं? जिम भाई, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एरिक, मुझे यकीन है कि वहाँ बहुत ही हंसी होगी। मेरी समझ से वहाँ संपर्क संचार के मायने होंगे कि वहाँ पर सब चीजें कैसी हैं। उनका इशारा होगा चीजों की संयुक्तता और चीजों की संबंधता, कनेक्टिविटी पर। हर चीजों की अनुरूपता, वर्दिनेस नहीं देखनी है, क्योंकि सब चीजों के बीच समरसता यानी हार्मनी है। हम शायद एक साथ चीजों पर हंसेंगे, वो एक अलग तरह की हंसी होगी, जैसे कि चीजों की सुंदरता पर या दो चीजें एक साथ, कुछ इसी तरह इशारा करेंगे। हम हंसेंगे या प्रशंसा की भावना होगी, जो भी परिस्थिति में हम अपने आप को पाएंगे उसके अनुसार। हर एक में स्वाभाविक हास्य होगा। कलयुग का एक प्रभाव है कि हम हंस नहीं पाते। इसको कर्मा कहते हैं। खुशी से खिल नहीं सकते, हम अपने आप पे हंस नहीं पाते। इसमें बहुत ज्यादा दर्द है। मैं समझता हूँ कि यह कहीं खो गया है। मेरी तरह का हास्य निश्चित रूप से कलयुगी हास्य है, लेकिन वहाँ ये सब परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हम आश्चर्य से उस सुंदरता को देखेंगे हमारे पास वहाँ क्या है। एरिक भाई, हम यकीनन प्रतीक्षा करेंगे आपके हास्य के लिए, और उम्मीद है कि उसका असर स्थायी रूप में एक छोटी सी मुस्कुराहट 2500 साल से कहीं ज्यादा समय में आएगी, जब हम मुस्कुराहट में अपने दांत दिखा सकेंगे। आपको सुनने में बहुत ही अच्छा समय व्यतीत हुआ। आप अपना समय पूरा कर सकते हैं 3-4 मिनट का चिंतन करके। आप अपने संकल्पों को मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा बांट सकते हैं। हम देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। आपको रुचि है नए युग की सूक्ष्मता पर, तो हम कुछ सूक्ष्म पल आपके साथ बिताएंगे। जिम भाई, ये एक छोटी सी मेडिटेशन है जो कि फरिश्तों के मन पर एकाग्र करती है, यानी मधुर भाषा में कहेंगे दिव्य मन। स्वर्णिम युगी मन दिव्य मन से पहले की स्थिति है। फरिश्ता मन मुक्त है, अनासक्त है और सत्य के साथ संरेखित है। यह भीतरी और बाहरी दुनिया के बीच गतिविधि करता है। क्या मन खाली है या उसको स्वीकृति, प्रशंसा और सफलता की माला की जरूरत है? एक मन जो सूक्ष्म और हल्का है, निश्चिंत और संतोषी है। एक ऐसा मन जो रूप और भूमिका में फंसा हुआ नहीं है, जो यंत्र संबंधित दुनिया से प्रभावित या धोखा नहीं खाता। उसका दिल खुशी से भरपूर होता है, उत्साह और आनंद से भरपूर। फरिश्ते का मन एक दूत है, एक आध्यात्मिक राजदूत जो कि एक पुल की तरह है। शाश्वत सच और भगवान के शुद्ध संकल्पों तक पहुंचने वाले हाथों के बीच, यह आध्यात्मिक शक्ति का एक अवतार है। एक ऐसी प्रतिमा जो हर विश्वास को मानती है। यह एक लौटती हुई छवि है जो लंबे काल से खोया हुआ एक सपना है। अद्भुत है, सुंदर है, ये हमारी ही छवि है। ओम शांति। एरिक भाई, आहा, ये बहुत ही कमाल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर प्रेरणा है, सूक्ष्म है। और हाँ, आपने हमें सिखाई है। अब हम तैयार हैं, हम भरपूर हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। हम बहुत ही सराहना करते हैं आपने अपने विचार हमारे साथ सच्चाई से बांटे। हम आशा करते हैं फिर जल्दी ही मिलेंगे। एक बहुत बड़ा ओम शांति आपको। धन्यवाद जिम भाई, आप सबको भी धन्यवाद। ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपके इस सुंदर कार्यक्रम का एक हिस्सा बना। धन्यवाद। ओम शांति।